आरव और आयु को मिस्टर खुराना के अरेस्ट होने का पता चल चुका था। आयु पहले आरव के साथ जा रही थी। जैसे ही वो दोनों गाड़ी में बैठे, उन्होंने माहिरा के बारे में बात की। तब आरव ने उस वक्त अपनी प्रायोरिटी मिस्टर युवराज खुराना को जेल से बाहर निकालना बताई, जिसके बाद आयु नाराज होकर बाहर चली गई। आरव ने उसे रोका भी नहीं। आरव आयु को छोड़कर अकेले ही पुलिस स्टेशन चला गया था, तो वहीं आयु अंदर जाने के बजाय गार्डन एरिया के झूले पर बैठकर रो रही थी। आयु ने रोते हुए खुद से कहा, इससे अच्छा होता कि हम वापस जन्म ही नहीं लेते। जब मर गए थे, सब खत्म हो गया था, तो क्या जरूरत थी सब कुछ वापस शुरू करने की। आयु आसमान में देखते हुए भगवान से शिकायत कर रही थी। वो आगे बोली, अगर फिर से वापस शुरू किया है तो आप मुझसे मेरे आरव को छीन नहीं सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि उसे अपने डैड के पास नहीं जाना चाहिए या उन्हें बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पर इन सब में मेरी क्या गलती है जो बार बार हमें अलग होना पड़ता है। खुद से बातें करते हुए आयु जोर जोर से रोने लगी थी। उसका ध्यान आसमान की तरफ था। तभी उसे किसी का हाथ अपनी पीठ पर महसूस हुआ। फिर उस शख्स ने पकड़कर उसको अपने सीने से लगा लिया था। आयु की आंखें बंद थीं, फिर भी वो इस टच को पहचान सकती थी। आयु ने सुबकते हुए कहा, मुझसे अब और नहीं झेला जा रहा है। क्यों ये डेस्टिनी बार बार हमें अलग करने पर तुली हुई है? अगर इसने यही डिसाइड कर रखा है तो हमें पास ही क्यों लेकर आती है? अच्छा था ना जब हम दोनों को ही कुछ याद नहीं था। शांत हो जाइए मॉम, आर्य ने आयु के बालों को सहलाते हुए कहा। जैसे ही उसने टीवी पर न्यूज देखी, वो तुरंत आरव और आयु के पास आ गया था। नहीं शांत कर सकते खुद को, आगे क्या होगा अच्छे से पता है और सोचकर भी डर लग रहा है। आयु ने रोते हुए आर्य की आंखों में देखा। फिर वो कुछ पल रुककर बोली, तुम बहुत छोटे थे, तुम्हें नहीं पता, तब भी मेरे लिए आरव से दूर रहना कितना मुश्किल था। उस वक्त आरु मेरे साथ थी, फिर भी ऐसा कोई मोमेंट नहीं बीता होगा जिसमें मुझे आरव की याद नहीं आई हो। आर्य ने उसके आंसू साफ किए और कहा, हाँ तब बच्चा था तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे होते हुए आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आप मुझ पर यकीन करो। तुम पर यकीन कर लूंगी, पर इस किस्मत पर यकीन नहीं है। तुम अपने डैड को जानते नहीं हो, आज भी वो उतना ही जिद्दी है। माहिरा बहुत खतरनाक है, उसने हमारी आंखों के सामने इतना कुछ प्लान कर लिया। जरूर डैड को बचाने के लिए वो आरव से यही बोलेगी कि आरव उसके पास चले आए, और ऐसे में आरव मना भी नहीं कर सकता। आरव चला गया तो मैं उसके बिना कैसे रहूंगी, आयु ने जवाब दिया। उसके आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। वो तो सोचकर ही घबरा रही थी कि अगर आरव ने उसे छोड़ दिया तो अकेले उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। आर्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आयु के दिल का डर सही था, आर्य की भी आंखें नम होने लगी थी। उसने मन ही मन कहा, कैसे कहूँ आपसे कि आपके दिल में जो डर है वो मुझे भी लग रहा है। हम डैड को रोक भी नहीं सकते, फिक्र मुझे सिर्फ आपकी है, क्योंकि वो खुद को संभालना जानते हैं, वो हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं। आयु को संभालने के लिए ही आर्य वहां पर आया था। काफी देर तक आयु उसके कंधे पर सर रखकर रोती रही और वो चुपचाप उसे सहला रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरव जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसके साथ में उनका लॉयर भी था, जिसकी वजह से आरव को युवराज से मिलने की परमिशन मिल गई थी। आरव जब युवराज से मिलने सेल की तरफ जा रहा था तो माहिरा की नज़र उस पर गई। माहिरा अपना स्टेटमेंट दे रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन मन में काफी कुछ था। माहिरा ने अपने मन में कहा, कहा था ना खुद चलकर आओगे, अपनी पत्नी से लड़कर आओगे, उसे अकेले छोड़कर आओगे। अभी चैलेंज पूरा नहीं हुआ है आरव, थोड़ा रुक जाओ, फिर तुम पूरी तरह मेरा बनने के लिए आओगे, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। माहिरा वहां अपना स्टेटमेंट लिखवाने में बिजी हो गई, तो वहीं आरव लॉयर के साथ युवराज के पास पहुंचा। कुछ देर के लिए आरव ने लॉयर को बाहर ही छोड़ दिया था और वो अकेले युवराज के पास गया। आरव को देखते ही युवराज ने अपनी नजरें झुका ली थी। आरव चुपचाप युवराज के सामने बैठा हुआ था। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद युवराज ने नजरें झुकाए हुए ही भारी आवाज में कहा, प्रिया कैसी है? उसने सुना होगा तो वो टूट गई होगी। जब आपको पता है कि ये सब सुनने के बाद उनकी क्या हालत हुई होगी तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आरव ने बिना किसी भाव के कहा। अचानक युवराज की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। वो सुबकते हुए बोले, नशे में मुझसे गलती। युवराज की बात पूरी होने से पहले ही आरव ने बीच में काटते हुए कहा, कभी उस बात की जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेनी चाहिए जो गलती आपने की ही ना हो। आप तो नशे में थे, फिर कैसे कह सकते हैं कि आपने उसके साथ रेप किया था? युवराज हैरानी से आरव की तरफ देखने लगे। वो सिर हिलाकर बोले, जब मुझे होश आया तब वो मेरे नीचे लेटी हुई थी। हम दोनों की बॉडी पर कपड़े नहीं थे और माहिरा की हालत काफी खराब थी। इससे ये प्रूफ नहीं हो जाता कि आपने उसके साथ रेप किया था। अब मेरी बात गौर से सुनिए, शायद मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि माहिरा लूथरा कौन है। पिछले जन्म में वो मेरी एक्स थी और वो अब मेरे पीछे आई है। उसने आपको अपना मोहरा बनाया है और आप आसानी से उसकी बातों में आ गए। युवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उलझन भरे स्वर में बोले, वो तुम्हारे पीछे क्यों आएगी? तुम तो उससे उम्र में बहुत छोटे हो, ऊपर से तुम शादीशुदा हो। आपको अभी भी समझ नहीं आया उसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमें ऐसे ही नहीं दिया है। मेरी ही गलती है जो मैंने उसे हम सबकी जिंदगी में इन्वॉल्व होने दिया। अब कुछ नहीं हो सकता है डैड, आपकी आज़ादी तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन मुझे फिर से उम्र भर के लिए उसका गुलाम रहना पड़ेगा। बोलते हुए आरव के शब्द भारी होने लगे थे, गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई थी। आरव ने गुस्से में टेबल पर पंच करके कहा, आप कैसे एक अनजान इंसान के करीब जा सकते हैं? आपने कुछ नहीं किया था, लेकिन आपने उस पर यकीन किया और उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगे, यही सबसे बड़ी बात है। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वो हमारे घर आती जाती रहती थी, मॉम से मिलती रहती थी, और आप दोनों ने आसानी से उस पर यकीन कर लिया। हाँ, तो हमें थोड़ी ना पता था कि तुम्हारी एक्स तुम्हारे पीछे इतनी पागल होगी कि अपने बेटे की उम्र के लड़के को फंसाने का सोच रही है, युवराज ने हल्के गुस्से में जवाब दिया। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, बस आप पुलिस के सामने कुछ एक्सेप्ट मत कर लेना। आपने कुछ नहीं किया है क्योंकि माहिरा मेरे अलावा किसी को अपने करीब नहीं आने देगी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आरव अपनी बात समझकर वहां से जाने लगा। तभी युवराज पीछे से तेज आवाज में बोले, मुझे उम्र भर कैद में रहना मंजूर है, लेकिन अपने बेटे की गुलामी नहीं। एक काम करना, अपनी मॉम को सच बताकर उसे संभाल लेना, बाकी तुम किसी के साथ कोई डील नहीं करोगे। जब मेडिकल होगा तो अपने आप सबूत सामने आ जाएगा। आरव युवराज की तरफ पलटा और कंधे उचकाकर बोला, रियली डैड, आपको ये लगता है कि सच सामने आ जाएगा? जबकि सच आना तो दूर की बात है, यहाँ मौजूद हर एक शख्स को उसने पैसे के दम पर खरीद लिया होगा। मैं अपनी मॉम को तकलीफ में नहीं देख सकता। आपको एहसास तक नहीं है कि बिना माँ के रहना क्या होता है। जितना कहा है उतना ही कीजिए, प्लीज मेरे लिए मुसीबतें मत बढ़ाइए।
युवराज आरव को रोकना चाहता था, लेकिन आरव कहाँ सुनने वाला था। आरव के जाते ही युवराज धीरे से बोला, ये लड़का मेरी कभी सुनता क्यों नहीं है? अपना नहीं तो अपने प्यार का एक ख्याल कर लेता। पता नहीं आयु पर क्या बीत रही होगी, पिछले जन्म में कैसे झेला होगा इसने उसे, ऊपर से इस जन्म में भी उसे नया ऑप्शन नहीं मिला। युवराज को छोड़कर आरव सीधा माहिरा के पास जा रहा था। वो जानता था कि उसे कब, क्या और कैसे करना है जिससे वो युवराज को बेगुनाह साबित कर सके। ऐसा लग रहा था आरव वहां पहले से फैसला लेकर आया था। आरव जानता था उसे माहिरा कैसे मिल सकती है। बाहर निकलते ही वो सीधा पुलिस इंस्पेक्टर के पास गया और बोला, मुझे मिस लूथरा से बात करनी है। इंस्पेक्टर ने कुछ पल उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर सख्त आवाज में कहा, अच्छा, तो तुम विक्टिम से मिलकर उसका दिमाग बदलना चाहते हो, उसे धमकी देकर प्रेशराइज करना चाहते हो। युवराज खुराना के बेटे हो ना तुम? अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसे लोगों को, जहाँ मौका मिला अपने पैसे की पावर दिखाने आ जाते हो। इंस्पेक्टर आरव से काफी बदतमीजी से बात कर रहा था। आरव ने सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखा और बोला, बकवास बंद करो और जो कहा है चुपचाप वो करो। वैसे ये एक्स्ट्रा डायलॉग मारने के लिए उसने अलग से पैसे दिए थे क्या? आरव को पहचानते देर नहीं लगी कि पूरा पुलिस थाने को माहिरा ने पैसे खिलाए होंगे, तभी वो उसके इशारे पर नाच रहे थे। इंस्पेक्टर ने कुछ पल आरव को गुस्से में देखा और फिर अचानक ही उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वो आरव से बिल्कुल धीमी आवाज में बोला, क्या सर, जब इतना पता है तो खामखा क्यों दिखावा कर रहे थे? आप भी अच्छे से जानते हैं कि आपको मिलने से नहीं रोका जाएगा। चलिए आपको मैडम के पास लेकर चलता हूँ, हमें तो आप ही के आने का इंतजार था। इंस्पेक्टर ने जल्द ही अपने असली रंग दिखा दिए थे। उसने आरव को अपने पीछे आने का इशारा किया। आरव उसके पीछे पीछे जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन रूम में पहुंचे। वहां माहिरा के साथ दो लेडी कांस्टेबल और एक मेल इंस्पेक्टर खड़ा था। आरव के साथ जो इंस्पेक्टर आया था उसने इशारे से उन्हें बाहर जाने को कहा, जिसके बाद वो सब बाहर चले गए। उनके जाते ही इंस्पेक्टर आरव की तरफ शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, ठीक है फिर, अब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले में टाइम बिता सकते हैं। वो इंस्पेक्टर आरव की तरफ देखकर मुस्कुराकर बातें कर रहा था, जिसे देखकर आरव को और भी चिढ़ हो रही थी। वो इरिटेट होकर सख्त आवाज में बोला, जितना कहा है उतना करो, तुम्हारी मालकिन तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे नहीं खिलाने वाली है, जितने की बात हुई है उतने ही मिलेंगे। इंस्पेक्टर खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही आरव ने माहिरा की तरफ तिरछी निगाहों से देखा और फिर उस रूम का दरवाजा बंद कर दिया था। वैसे भी वो कमरा साउंड प्रूफ था। आरव के माहिरा की तरफ पलटते ही माहिरा अपनी जगह से खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। जब आरव माहिरा की तरफ बढ़ रहा था तो माहिरा बोली, कहा था ना खुद चल कर आओगे, देखो आगे, मैंने तुम्हें अपने पास आने को मजबूर कर दिया है आरव खुराना। सोच लो अब क्या चाहिए, अपना बाप और उनकी इज्जत, या फिर अभी भी तुम्हें अपने उस सो कॉल्ड प्यार के साथ रहना है? माहिरा ने बात को घुमाए फिराए बिना सीधे सीधे कहा था। आरव भी कहाँ हार मानने वाला था, वो माहिरा के सामने पैर पर पैर चढ़ाकर बिल्कुल किसी किंग की तरह बैठा था। तो क्या आरव और माहिरा की डील हो जाएगी और आरव आयु को छोड़ देगा? आरव का एटीट्यूड भी कम नहीं, माहिरा जैसी आफत को वो ही झेल सकता है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।